संस्कार। तो आज इस स्वमान का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें कि हम जैसा खुशनसीब, हम जैसा भाग्यवान इस सारे संसार में कोई नहीं, कोई भाग्यवान नहीं है। हम सबसे भाग्यवान हैं। भाग्यवान हम कितने हैं भगवान पढ़ाते हैं, भाग्यवान हम कितने हैं भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे उसे सामने पाते हैं, अगम अगोचर कहते जिसे उसे सामने पाते हैं और हमें भगवान पढ़ाते हैं। किसी जन्म के भले कर्म थे पुण्य का फल है पाए, दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको अपनाए। परम पिता वो परम धाम से धरा पे आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अपरम पार प्रभु हैं अपना हमको पार बताए, अपरम पार प्रभु हैं अपना हमको पार बताए, और वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का हमको सुनाए। ज्ञान के सागर खुद जैसा ज्ञानवान बनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। सुख शांति आनंद प्रेम की हीरे माणिक मोती, पवित्रता संतोष रतन से जग गई जीवन ज्योति, जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन से हमें धनवान बनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने प्रेम से बांची, देह और दुनिया भूल के सब कुछ गोप गोपियां नाची। प्रेम छाछ पे नाच नाच के हमें नचाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। खुद को जाने खुदा को जाने कर्मों की गति जाने, खुद को जाने खुदा को जाने कर्मों की गति जाने। और सृष्टि मंच का खेल है सब कुछ, सृष्टि मंच का खेल है सब कुछ, और सागर लगे सुखाने, सृष्टि मंच का खेल समझकर सागर लगे सुखाने। खुद सा बनाते त्रिकालदर्शी, महान बनाते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं। भाग्यवान हम कितने हैं कि भगवान पढ़ाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे उसे सामने पाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। है ना नशा, नशा है, कुछ नशा चढ़ा ऐसा नहीं कि कोई चढ़ाने वाला हो तब चढ़े, ये निरंतर चढ़ना चाहिए। कम से कम जिस दिन हम बाबा की जो मुरली सुनते हैं, उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, उनको बार 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 दोहराए, एक दिन तो कम से कम नशा चढ़ा ले। और ये बात सच मानिएगा, अगर एक दिन भी नशा चढ़ गया तो उसका नशा लंबे समय तक रहता है। असल में हम उसको उगारते नहीं हैं, उसको दोहराते नहीं, दोहराएं तो सारी खुशी का पारा चढ़ जाए। तो आइए आज बाप दादा के महावाक्यों का थोड़ा सिंहावलोकन कर लें, विचार कर लेते हैं। आज बाबा ने कुछ विशेष बातों पर ध्यान खिंचाया है। पहली बात तो ये कि हम जैसा खुशनसीब सारी दुनिया में कोई नहीं। क्या लिस्ट है आपके पास अपनी खुशनसीबी का? खुशनसीबी का लिस्ट होना चाहिए। ऐसे कह देने से मैं खुशनसीब हूं तुरंत ही घर का ख्याल आ जाता है, तुरंत ही और दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, और दूसरी बातें आ जाती हैं। आज हमको उसने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, हम बातों में भूल जाते हैं। जब ये ध्यान रहे कि हमें मिला क्या क्या है और इसका स्मरण चले, तब अपने खुशनसीबी का अनुभव। सब कोई बताइए, एक एक खुशनसीबी अपनी बताइए। हम खुशनसीब हैं, भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? हाँ, और क्या खुशनसीबी है? सत्य ज्ञान मिला, वेरी गुड, क्या बात है जी। स्वयं भगवान के, हाँ जी, पढ़ाते हैं। हाँ माता जी, और बताइए। पाना था सो पा लिया, वाह क्या बात है, बड़ी गजब की खुशी है, क्या नशा है। बोलो है, बाबा से मिलन हो गया, भगवान से मिलन हो जाए, कितनी बड़ी बात है, या आसान थोड़ी बात है। भगवान से मिलना हो, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। हाँ बोलो, हाँ हाँ क्या बात है, पवित्रता के आधार से विश्व की बादशाही मिल जाती है, बहुत खूब। बोलो भाई की तरफ। अब अच्छा, बाबा प्रेम का सागर है, हमको अपने समान बना लेता है। चलो सागर न बने तो कम से कम गंगा बन जाए, नदियां बन जाए, नदियां न बन जाए तो कम से कम तालाब तो बने हैं। लेकिन लक्ष्य कौन सा देते हैं? बाबा नंबर वन का लक्ष्य देते हैं। ऐसा नहीं कितना न सही इतने कर ले, जो थोड़े में राजी हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं बाबा? बाबा उनको क्या कहते हैं? उनको भगत कहते हैं। भगत कहते हैं भगवान थोड़ा भी तो दे दो। दुनिया वाले भी मांगते रहते हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, सारे मांग ही रहे है ना। लेकिन भगवान तो पूरा देता है, और बाबा कहता है पूरे से नीचे कम कभी नहीं आओ। लो तो पूरा, क्लेम करो तो पूरा इनहेरिटेंस, पूरी बात सही। बाबा त्रेता युग को तो कुछ समझता ही नहीं। हाँ क्या बात है, क्या नशा है, वाह बधाई, एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए देखिए, इतना नशा बुजुर्गों को, ये रूहानी नशा है, अलौकिक नशा है, नहीं तो इस उम्र में नशा थोड़े होता है, इस नशे में तो सब नशा उतर जाता है। लेकिन इतनी खुशी, इतना नशा, ये भगवान के बच्चों के पास ही ये कला है। तो हम इस ईश्वरीय ज्ञान के खुशनसीबी का चार्ट बना लें, जो भाई बहने लिख सकें, अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। आज बाबा कहते हैं कि निराकार बाप में ऐसे कौन से संस्कार हैं जिन संस्कारों को तुम बच्चे संगम पर अभी स्वयं में धारण करते हो। कौन से संस्कार हैं? ज्ञान के संस्कार हैं। ज्ञान सब कुछ है, ज्ञानी ही योगी है, ज्ञानी ही त्यागी है, ज्ञानी ही तपस्वी है, ज्ञानी ही ध्यानी है, ज्ञानी सर्व प्राप्ति स्वरूप है, और ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी मेरे बिल्कुल समीप है, मेरे बड़े करीब है। भगवान ज्ञान सागर है, प्यार का सागर तो है ही, लेकिन ज्ञान का सागर है। वो केवल प्यार करने के लिए नहीं आता है दुनिया में, किस लिए आता है बोलो? हाँ, वो ज्ञान सुनाता है, और ज्ञान सुना के पतित से पावन बनने की राह दिखाता है, युक्ति बताता है, शक्ति देता है। लेकिन बनना कौन है, किसको बनना है? बनना तो खुद को पड़ता है। अगर आप बनने को तैयार नहीं तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान की राह बताता है, वो बताता है बच्चे पतित से पावन बन जाओ। अगर अभी पावन बनेंगे तो 21 जन्म क्या पूरे कल्प कल्प के लिए तुम क्या बनोगे? महान बन जाओगे। तो मार्ग बताता है ईश्वरीय ज्ञान में। ज्ञान की इतनी जरूरत क्या है? जब हम जानते हैं कि योग ही सब कुछ है, जब हम जानते हैं कि योग से विकर्ण विनाश होंगे, जब हम जानते हैं कि अंत में योग बल ही काम में आएगा, और आज भी बाबा ने यही कहा, योग बल से पावन बनकर के पावन दुनिया की राजाई मिलेगी। लेकिन जब योग ही ठीक है तो इतना पढ़ाई पढ़ने का, इतना क्लासेस सुनने का, इतनी मुरली पढ़ने की, इतनी सेवा की भाग दौड़, इनकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? है किसके पास? बोलो। बहुत अच्छी बात बताई। ज्ञान इसलिए जरूरी है कि योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। याद के लिए ज्ञान के बिना याद संभव नहीं है। हमको योग की भी तो नॉलेज मिली, अपनी भी नॉलेज भी ही मिली ना, परमात्मा की पहचान की नॉलेज मिली, तब तो हम योगी बनेंगे। बिना ज्ञान के ना तो हम योगी बन पाएंगे, ना तो सेवा कर पाएंगे, ना तो दिव्य गुणों की धारणा कर पाएंगे, और ना महान बन सकेंगे। इसलिए ज्ञान और योग दोनों ही, रूप और बसंत बाबा कहते हैं, इन दोनों का बैलेंस रखकर चलना बहुत जरूरी है। एक भाई ने अव्यक्त बाप दादा से प्रश्न पूछा, कहा कि बाबा जब सब योग ही सब कुछ है तो इतना ज्ञान ये सब सुनने इतना करने की आवश्यकता क्या है? तो बाबा ने कहा, बच्चे आगे चल करके जब विपरीत स्थितियां परिस्थितियां आएंगी और योग आपका अगर टूट गया तो योग जुड़ेगा कैसे? योग लगाने के लिए भी, योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भी, योगी बनने के लिए भी ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। जब ज्ञान युक्त रहेंगे तब योग युक्त हो पाएंगे। तो ज्ञान को जोड़ने के लिए भी योग को जोड़ने के लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना? इसलिए पढ़ाई, तो हम सबका पढ़ाई पर बहुत ध्यान होना चाहिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञान की धारणा, ज्ञान सुनना क्यों जरूरी है? पहली बात, ज्ञान से हमारा चिंतन बढ़ता है, ज्ञान से हमारी बुद्धि क्लियर होती है, ज्ञान से हमें स्पष्ट चलने का मार्ग मिलता है। इसलिए रोज ही बाबा की वाणी, एक बाबा की वाणी चलती है तो मैं सोचता हूं कि एक वाणी चली, अभी इसको पूरा मंथन करना बाकी रह गया, अभी इसको सोचना गहराई में जाना बाकी रह गया, अभी इसको धारणा करना बाकी रह गया, दिन बीत गया, दूसरी मुरली फिर आ गई। तो हम सोचते हैं कि रोजाना एक एक बदली हो जाता है, लेकिन क्यों, एक दिन भी काफी होता है धारणा करने के लिए। रोज बाबा इसलिए अगर न पढ़ाई पढ़ाएं और रोज हम पढ़ाई न पढ़ें तो जैसे हम रोज भोजन न करें तो क्या हालत होती है? और दिन में भी भोजन तीन तीन बार, दो दो बार कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान का भोजन हम सोचें कि एक बार मुरली पढ़ ली और काम हो गया, तो कैसे हो सकता है? इसको जितना चाहे अमल में उसको लाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान के चिंतन से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान के चिंतन से हमारी चिंतन चिंतनिका हमारी क्लियर होती है। जितना चिंतन श्रेष्ठ बनता जाता है उतना हमारे आचरण में वो चीज उतरने लगता है। ज्ञान इसलिए जरूरी है कि ज्ञान ही इस ईश्वरीय जीवन की, गॉडली स्टूडेंट लाइफ बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है। ये स्टूडेंट लाइफ पहले ना कभी मिला हो, मिला है और ना मिलेगा। हमने देखा, अपनी आदरणीय दीदी को देखा, दीदी की हमने 8 विशेषताएं सुन ली। पहली विशेषता रही दीदी की संपूर्ण समर्पित रही, संपूर्ण समर्पण भाव। दूसरे दिन की दीदी की विशेषता रही कि दीदी क्या रही, संपूर्ण मस्तानी गोपिका थी, मुरली की मस्तानी गोपिका थी। तीसरे दिन की विशेषता रही कि दीदी सच्ची पतिव्रता, सत्यव्रता, पिताव्रता थी। और चौथी विशेषता थी, दीदी में कि दीदी नंबर वन गॉडली स्टूडेंट थी, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट, आगे बैठना, पढ़ाई पढ़ना। जब दीदी ने, दादी ने, सबने इतना ध्यान दिया तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए? अपनी पढ़ाई पर रेगुलर, पंक्चुअल, एक्यूरेट होना चाहिए। मुझे याद है दीदी यहां बैठी, दादी और दादा, विश्वरतन दादा यहां बैठे, और ये बात थी 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा, तो 79 की बात करते थे। तो देखा मैंने रात को दीदी आई 11:30 बजे सिरोही से आई। दीदी आई सिरोही से और मैं जा रहा था, रेस्ट के लिए जा रहा था। मैंने देखा दीदी आई, इतनी बुजुर्ग होते हुए दीदी आई सवेरे अमृत वेला, योग के लिए यहां बैठी है। मैं जब योग बैठता हूं तो देखता हूं दीदी पहले बैठी। तभी मैंने संकल्प किया कि मधुबन निवासी बनना है तो कभी भी अमृत वेले का योग मिस नहीं करना। विश्वरतन दादा कभी भी योग मिस नहीं होता था, दीदी को इतना ध्यान होता था। दीदी यहां योग कराती थी, दीदी मुरली सुनाती थी, दीदी मुरली सुनती थी आगे बैठ करके। तो ये दो दीदी की विशेषता है, ये नंबर वन थी। दीदी की पांचवी विशेषता थी, कौन सी विशेषता रही दीदी की? पांचवी विशेषता रही दीदी कि दीदी में परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत अचूक थी। पांचवी विशेषता थी कि दीदी भाषण नहीं करती थी लेकिन भाषण देती थी, भाषणा देती थी। भाषणा क्या है? सबको ये फीलिंग देना कि ईश्वरीय परिवार में आए हो, बाबा से प्रीत बुद्धि होना। दीदी की पालना ऐसी थी, मैंने देखा कितने बड़े बड़े स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के वकील लालचंद वत्स और हाई कोर्ट के जज गुप्ता जी, रामेश्वर दयाल रामेश्वर जी गुप्ता जी, ये सब बड़े दोस्त थे। लेकिन दीदी ने ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को ऐसी स्नेहवत पालना दी, ऐसी भाषणा दी कि उनको पक्का स्टूडेंट बना लिया। वो इतने साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूं, ये नहीं मैं इतने इतने दिन, इतने इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड मैं ज्ञान में हो गया हूं, पूरा हिसाब रखते थे लालचंद वत्स जी। तो दीदी की बड़े गजब की पालना थी, नंबर वन पालना। फिर दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू भरा था, और आज की मुरली में था दीदी जितनी गंभीर थी उतनी ही दीदी रमणीक थी। ये सो जो भी चीजें मिल रही हैं इन्हें बार बार स्मरण करना चाहिए। जब दीदी की एक विशेषता आ जाए, आज की विशेषता ये है, तो केवल सुन लिया नहीं, उसको बार बार याद करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि भाई भूल जाते हैं, तो भूल क्यों जाते हैं? अगर बार बार याद करेंगे तो भूलेंगे क्यों? यानी याद करने में हमारी कमी है, इसलिए हम उसको याद करके बढ़ाएं। बार बार याद करेंगे तब वो चीजें आएंगी। ये स्टूडेंट लाइफ बहुत वैल्यूबल है। स्टूडेंट जो विद्यार्थी जीवन है, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है, वो इसलिए भी जरूरी है कि देखिए आप भाई बहने यहां बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हो सकता है कुछ थके मांदे हो, कमरे में भी हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि रोज सुनाया जाता है क्या सुनना है, ऐसे भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं, स्टूडेंट लाइफ माना पढ़ना पढ़ाना, हमेशा सीखने की भावना रखना, सिख सिख है, झुक झुक मर मर, है ना? ये सुना है ना? हाँ, हमारी ध्यानी दादी के बहुत अच्छा एक वो सीख मिलती थी। यहां ध्यानी दादी रहती थी और यहां बैठती थी, मैंने देखा उनका, तो ये सबक मिलता है। सब दादियां यहां पर होते थे, यहां ब्रह्मा भोजन होता था, बाबा ब्रह्मा भोजन कराते थे, बड़ा गजब का पाठ चला उन दादियों से पूरा। जिधर जाओ उधर दादियां ही दादियां थी, देखो दादियां सब उड़ गई, दादियों का पाठ पूरा हो गया। देखते देखते अभी भी हमारे बीच में एक आध दादी हैं, यूं दादियां तो जा नहीं सकती, उनको हम देखते हैं, उनका सुनते हैं, चारों ओर हमारी तरफ हैं। ऐसा जीवन जिया उन्होंने कि हमको पूरा सिखा की गई कि जीवन जिया जाए तो ऐसे जिया जाए। ऐसी विभूतियां उन्होंने पल पल अपना सफल किया। उन्होंने अपने इतिहास में, विश्व के इतिहास में, अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा में अपना अविनाशी पार्ट मूंद कर लिया। आप सब अभी आए हैं, हो सकता है दो चार साल ज्यादा हो, हो सकता है 20-25 साल के भी हों, हो सकता है कोई 50 साल के भी ज्ञान में चलने वाले हों। 50 साल के ज्ञान चलने वाला है कोई? 50 साल बाबूजी तो बाबा के जमाने का है, वो दादा बैठा है पीछे है। चलिए बहुत अच्छा है। तो जो समय मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट लाइफ इसको कहते हैं। बाबा की पढ़ाई पढ़ करके भी, इतनी दादियों की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी अभी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसको स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। ये सीखने की बात है। बाबा का हर बच्चा वो इतना योग्य है कि अपनी वो डंका नहीं पीटता है, अनाउंस नहीं करता है, वो सिखाता बताता नहीं कि मैं इतना दान करता हूं, इतना यज्ञ में सेवा करता हूं, क्योंकि वो कहने से खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा के एक एक बच्चा कितनी कितनी सिंसियरली ज्ञान कर रहा है, योग कर रहा है, धारणा कर रहा है, सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को क्या पता। इसलिए बाबा के हर बच्चे के प्रति हमारे मन में ऊंचा दृष्टिकोण होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि इस माला का लास्ट दाना और पहला दाना, वो दोनों दाने मिलते हैं तो पूरे हम सब एक ही माला के मड़के हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो दाना पीछे वाला हूं, मुझे कौन जानता है, कौन देखता है। उसकी भी वैल्यू उतनी है जितने पहले की, क्योंकि दाने से दाना मिलता है तो ही माला बनती है। तो हम सब एक माला के दाने, हमें हर एक में विशेषताएं देखना चाहिए। बाबा का हर बच्चा विशेष है। पहली विशेषता यह है कि इन साधारण नेत्रों से भी भगवान को जान लिया, पहचान लिया, देख लिया, मान लिया, अपना बन गए। ये दुनिया के लोगों के पास ये दृष्टि नहीं है जो दृष्टि बाबा के बच्चों में है ना। तो बाबा को तीन बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा अक्सर करके कहा करते हैं, बाबा कहते हैं पहले वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो अनपढ़ है, अनपढ़ है, काहे को पढ़े और काहे को भुलाए, न पढ़े न भुलाने की मेहनत करनी पड़ी। देखो माताएं कितनी खुश हो रही हैं, वाह वाह क्या बात है, हैं? बाबा कहते हैं सारा भूसा इतना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक भी काम के नहीं, उन्होंने और ही खराब किया, दुनिया को खराब कर रहे हो पूरा, ज्ञान ही कुछ दूसरा है। दुनिया के आज किसी भी कोने में कहीं जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण पवित्र बनने का ज्ञान दे दे। संपूर्ण पवित्र बनाने वाला केवल भगवान है। कोई समझ ही नहीं सकता है कि बिना विकारों के दुनिया भी बन सकती है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया भी होती है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं। इसलिए बाबा के बच्चों में विशेषता ये है कि वो ज्ञानवान है और पवित्र है। उन्होंने अपनी साधारण दृष्टि से भी भगवान को देख लिया। तो आप में से कोई भी भाई बहन किसी से कम नहीं है, अपने को बहुत कम नहीं, कम समझो ऐसा नहीं, सदैव समझो, इस नशे में रहो कि हम भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम खुशनसीब हैं, भाग्यवान हम कितने हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो अपने खुशनसीबी का ये कि पहली दृष्टि, पहली बात कि हमारे पास वो दृष्टि है जिस दृष्टि से भगवान को हमने अपना बना लिया। दूसरी बात यह है कि ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने आज के इस कलयुगी विकारी दुनिया में, पतित दुनिया में, जहां पर वाइब्रेशंस ही पवित्रता के नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं, दृष्टि वृत्ति कृति सब इतनी मैली हो गई है, पूरे गटर के कीड़े बन चुके हैं, सब उसमें डूब उतरा रहे हैं। दुनिया बहुत गंदी है, इस गंदी दुनिया से अपेक्षा रखें कि पवित्रता का सहयोग मिलेगा, नहीं। केवल परमात्मा ही है जो हमें इस कीचड़ में रहते हुए कमल के समान हमें खिला रहा है, इतना पावन बना रहा है, कितना अच्छा ज्ञान मिला है, पवित्र जीवन। हम इस जीवन को कहते हैं, इस जीवन देखिए 60 से ज्यादा उम्र हो गई, लेकिन इस कुमार जीवन का जो आनंद है, जो पवित्रता का जीवन मिला, एक एक पल सफल हुआ, हमारा अंतिम जन्म इतना पवित्र, तो मेरा पहला जन्म कितना पवित्र रहा होगा, सोचिए। आनंद से भरे, पवित्रता की प्रस्फुटन हो रही है, मन चित्त दिल दिमाग हर चीज चारों ओर देखिए। इस वातावरण में रहते हुए मधुबन के शक्तिशाली धरणी में 40 वर्ष हो गए, इस धरणी का जो आनंद मिला है कितनी शक्तिशाली है, संसार की सर्वोच्च शक्तिशाली सर्वोत्तम स्थान, चारों धाम यहां पर है। अब शांति वन भी चारों धाम बनता जा रहा है, शांति धाम में वहां पर जानकी दादी का जहां स्मारक बना है शक्ति स्थल, वहां पर सवेरे सवेरे जाते हैं, खूब दादी से मुलाकात करते हैं। फिर अव्यक्त लोक बन रहा है वहां बाबा वाली दादी, वहां उनका चित्र बना है, वहां पर कुछ पल खड़े होते हैं, कुछ दादी के साथ मिलन मनाते हैं। फिर चले आते हैं प्रकाश स्तंभ पर, दादी प्रकाशमणि से खूब मुलाकात करते हैं, उनके जो स्लोगन है वो याद कर लेते हैं, ऐसे जाके खड़े हो जाना नहीं, वहां पर उसको लेते हैं। फिर बाबा के कमरे में जाते हैं तो हमारा चारों धाम हो जाता है, वहां भी चारों धाम होता जा रहा है, आगे चल के यहां सब नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं चारों धाम की अनुभूति कर लेंगे। लेकिन ये धरणी जिसको भगवान ने बनाया है, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, क्या रंग है। आप चारों धाम पे आए हैं, कितने भाग्यवान हैं, आपसे भाग्यवान कोई नहीं हो सकता है। ये भाग्य की लिस्ट में बनाओ तो इसको लिखिए, कोरोना काल में चारों तरफ इसके बीच में आप यहां आए सीजन की शुरुआत करने के लिए, ठीक है, हैं? तो एक बार अपने भाग्य के लिए बधाई स्वीकार करें, बहुत भाग्यवान है, हाँ आप जैसा खुशनसीब, हाँ जैसे वाह भाग्यवान, मैं कितना भाग्यवान हूं, और ये भी बड़ा भाग्यवान है, बहुत बड़ा भाग्यवान है, ठीक बात कही। और तो ऐसी दुनिया में जिन्होंने दिल से कहा बाबा आप मेरे हैं, मैं आपकी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जन्मते ही बाबा के बनते ही जो हमको ज्ञान मिला और जो हमने दिल से बाबा के हवाले हो गए, बाबा ने कहा बच्चे योगी भाव पवित्र भाव, और जैसे बाबा ने वरदान दिया योगी बन गए, बाबा 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 कहने लगे। प्रारंभिक दिनों में तो देखो आंख में आंसू बहते थे, जैसे गंगा जमुना बह रही है, कितने प्यार में, सेकंड में परमधाम पहुंच जाते। अभी तो परमधाम जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, तो सुरम जब ज्ञान में आते हैं होती है, क्या लहर होती है, पांव ही धरती पर नहीं होता है, आहा आहा बाबा, हाँ बिल्कुल। जैसे नन्हे बच्चे होते हैं ना, जैसे गाय का बछड़ा होता है छोटा ना, तो बड़ा फुदकता है, देखते हैं ना कितना दौड़ता है, बिल्कुल वही चाल हमारी होती है। फिर धीरे धीरे इधर उधर देख लेते हैं, अच्छा ये भी ऐसे है वो भी ऐसे है, तो थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगते, वहीं से वहीं नीचे पारा उतरने लगता है। फिर भी हमेशा एक रस स्थिति बनाने के लिए ये चिंतन बहुत जरूरी है। तो दूसरी बड़ी विशेषता है कि इस अपवित्र दुनिया में बाबा से कहा बाबा आप मेरे हैं मैं आपका हूं, और संकल्प किया बाबा, बाबा ने कहा बच्चे कुछ नहीं, ये बचा खुचा ये भी पता नहीं कितना समय है, केवल मेरे खातिर बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो, पवित्र बन जाओ, सारी गंदगी तो सारा जीवन में बिता दिया, अब थोड़े पल के लिए मैं केवल पवित्रता के तुम्हारे द्वार पर खड़ा भीख मांग रहा हूं, भगवान भिक्षा लेकर लेने के लिए हमारे द्वार पर खड़ा है, भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान, हम उसको अपनी पवित्रता का सहयोग दें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित कभी नहीं बनना है, उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, बर्तन मांजना पड़े, घर छोड़ना पड़े, हैं? भीख मांगना पड़े, कुछ भी हो, बाबा के ऐसे बच्चे भीख तो नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, हमारी पवित्रता का सहयोग चाहिए, पवित्र संकल्पों का सहयोग चाहिए। जैसे हम संकल्प करते हैं मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, ऐसे ही हमसे पवित्रता के प्रगमपन निकलने लगते हैं और ये हमारे तन मन को भी ठीक करते हैं और साथ में प्रकृति के वायुमंडल को भी ठीक करते हैं, पशु पौधे पेड़ जितने भी हैं इन सबको भी तरंगित करते हैं और यही पूरी कायनात को बदलते हैं। इसलिए दिन भर में जितनी बार हो सके संकल्प करें, ऊपर परमधाम न जा पाए तो यहीं बैठे, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, परम पवित्र, पवित्रता के सागर, प्यारे बाबा पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही है, मैं पवित्रता के झरनों में मैं आत्मा नहा रही हूं, अति आनंदित हूं, आनंद की तरंगे फैल रही हैं, पवित्रता, निर्संकल्पता, निश्चिंतता, बेपरवाह बादशाहत की किरणें निकल रही हैं। पवित्रता ही सब कुछ है, ये पवित्र दुनिया की बड़ी आवश्यकता है, पवित्र प्रकंपनों की बड़ी आवश्यकता है। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बन जाओ, और ऐसी दुनिया में रहते हुए जो बाबा को पवित्रता का सहयोग देते हैं तो बाबा का मन बड़ा खुश हो जाता है, बाबा उन पर प्रेम के पुष्पों की वर्षा करते हैं, जो पवित्रता के व्रत को सहर्ष लेते हैं, जो संकल्प करते हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्रता का दिन जीवन बड़ा प्यारा लगता है, पवित्रता प्राणों से प्राणी प्यारी, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता सुख शांति की ये जननी है, जननी है, पवित्रता पवित्रता से पार को पार करो, बहती जो वैतरणी है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये जननी है, पवित्रता की धारणा से स्वर्ग बननी धरणी है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये जननी। तो पवित्रता से हम परमात्मा के दिल को जीत ले, पवित्रता के आधार से हम बाबा के संपूर्ण प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भी बाबा का एक एक बच्चा बड़ा प्यारा है। मुझे याद है यहां पर बहुत साल पहले की बात है, दो कन्याएं, एक जो चंबल घाटी में जो डाकू पहले रहा करते थे उनमें पंचम सिंह उनकी बेटी, और एक रामा नाम की बच्ची थी जो दरोगा की बेटी थी, जिसको दोनों को डाकुओं ने लेकर जंगल में लेकर चले गए थे, बहुत परेशान कर रहे थे और उसको छोड़ने वाले नहीं थे, शायद फिरौती करने के लिए या कुछ है, लेकिन उस बच्ची ने कैसे संघर्ष किया, अपनी पवित्रता के लिए कितना मेहनत किया। उनके साथ एक माता भी थी, एक महिला भी थी डाकुओं के गिरोह में, उसने उसको मनाया कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो, उसने भाइयों का ड्रेस पहन लिया और घोड़े पे बैठ के या कैसे भी करके वहां से डाकुओं के चंगुल से निकल के कैसे आई। फिर बाद में पंचम सिंह वगैरह आए तो उनका उनके यहां भी उनकी बेटी भी ज्ञान में चली और सब ऐसे होता रहा। तो जब उसकी गाथा सुनी तो जिसने भी सुना ये प्रेरणा मिलती है बाबा के एक एक बच्चों की कि किस तरह से पवित्र जीवन के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। हमारी दादियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया, जिन्होंने कुछ देखा नहीं, लहरों से तुम आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, जिन्होंने ये सोच लिया कि लाश हमारी ओम मंडली से गुजरे लेकिन हम पवित्र रह करके रहेंगे, हमें ओम मंडली में जाना जरूर है, हम मर भी गए तो हमारी लाश को ओम मंडली से गुजारना, ऐसे दादियां कहती थी। हम ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर जो पवित्र आत्माएं हैं इतनी, जो सारी सृष्टि को पवित्रता का वाइब्रेशंस दे करके, धर्म सिखा करके पवित्रता की राह पर चलाने के निमित्त बनी, हम वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने सारे सृष्टि चक्र में, सारे कल्प में, सारे संसार की आत्माओं को पवित्रता का आधार देने वाले। अगर वो पवित्रता आज यहां कलयुग में लास्ट में हमारी वो पवित्रता का बल ना होता, बाबा मम्मा दादियों का, इन दीदियों का इनका बल पवित्रता का ना होता, हम पवित्र आत्माओं का सहयोग ना मिला होता, 2500 वर्ष तक संपूर्ण पवित्र बनकर हम देवी देवता न बने होते, तो आज इस कलयुगी दुनिया में सब जल के भस्म हो गया होता। तो हम वो पवित्र आत्मा है, सोचो कितनी महान आत्मा है। अपनी स्पर्धा की वैल्यू को स्वीकार करें, अंतर मन में समझे। और तीसरी जो ब्राह्मण बच्चों की बड़ी विशेषता है, वो ये विशेषता है कि वो संपूर्ण समर्पण है। संपूर्ण समर्पण मेहता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे बाबा के बच्चे जिस तरह से तन मन धन लगा करके स्वयं को पावन बन करके पवित्र बनाने की, पवित्र दुनिया बनाने की सेवा में जो लगे हैं, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं। आप कितने भी जाओ संस्थाओं में जाओ, वहां पर भी समर्पित हैं, लेकिन वो समर्पित कैसे हैं? वो वहां रहते हैं, खाते पीते भी हैं, उनको इतना पैसा भी मिलता है, उनको पगार मिलता है। आज एक मंदिर में जाइए, जो घंटी बजाने वाला पुजारी, अगर उसको पैसा ना दो तो घंटी बजाने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लेकिन बाबा के बच्चों में रात को अगर कहा जाए कि यहां पर आ जाओ, ये काम करना है, तो रात को तैयार हो जाते। आप सबको पता है, जब यहां पर महामंडलेश्वरों की बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत साल पहले, तो यहां महामंडलेश्वर आए, बहुत बड़े विद्वान आए, सब आए। तो एक विद्वान ने, एक महामंडलेश्वर ने, हमारे यहां सुखधाम में हमारे भाई हैं बाबा राम भाई, तो उनको कहा कि हम 11 बजे या 10 बजे रात को बताते हैं, जब सब ये किचन वगैरह बंद हो जाता है, तो बोलते हैं भाई हम रात को 11:30 पता नहीं 12 बजे हम बादाम डाला हुआ दूध पीते। तो बताओ रात को 12 बजे तुमको बादाम का दूध उनको पीना चाहिए, कैसे लोग हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने जब कहा बाबा राम भाई को, बाबा राम भाई गए किचन खोल करके बादाम को काट वाट करके, पिस्ता उस्ता जो भी है दूध बना करके, और जब जाके दिया उसके हाथ में, तो वो चौंक गया, कहता है यार कैसे है? वो रात को पीता नहीं था, वो परीक्षा ले रहा था कि देखो कि ये कितने कितने जो है आज्ञाकारी है और कितने समर्पित है। वो मान गया और कहता है कि कमाल होगी, आपको अंदर में गुस्सा नहीं आया कि रात को 12 बजे के लिए हम मांग रहे हैं और आपको ख्याल में नहीं आया? कहा नहीं, हम तो सेवादारी हैं, बाबा ने हमारी सेवा लगाई है, हम तो जब कहेंगे तब हम तैयार हो जाएंगे। तो ये समर्पण मेहता देख करके कहता है दादी को विदाई के समय पर, दादी हमारे भी बड़े बड़े आश्रम है, आपके आश्रम से भी यहां से बड़े बड़े आश्रम है, और हमारे लाखों अनुयायी है, भगत है, उनमें दो पक्के भगत हैं, और दोनों पक्के भगत रात दिन एक ही भक्ति कर रहे हैं, एक ही पूजा पाठ कर रहे हैं, एक ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं, एक ही भजन कर रहे हैं, और उनके भजन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है, दूसरा ना कोई, कि कब गुरुजी की गद्दी खाली हो हम गद्दी पे बैठे, वो राम भजन एक ही है उनका। दादी आप इनको क्या खिलाती पिलाती हैं कि रात को हम 12 बजे भी बादाम का दूध मांगते तो भी ये समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं? तो हंसी में कहते, मजाक में, दादी आपके यहां एक रिजेक्टेड ब्रह्मा कुमार हो तो भी देने की कृपा कीजिए, हमें मालूम है आपके यहां रिजेक्टेड कोई नहीं होता है। लेकिन कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि समर्पण मेहता, जो यहां समर्पण मेहता है वो बहुत बड़ी चीज है, जो यहां सीखा है आज बाबा से, हम सबने ये सीखा। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे ज्ञान के संस्कार को धारण करो, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने यहां पांडव भवन में हमारे एक चिमन भाई हैं, चिमन भाई बहुत पुराने भाई हैं, हम आए तो सबसे पहले हमारी मुलाकात यहां पर चिमन भाई से हुई, किचन में सेवा करते, आज भी बहुत सेवा करते हैं, चाचा जी उनको सब बोलते हैं, बहुत सेवा करते हैं यहां पर, आप सब सुने होंगे नाम, तो वो बहुत सेवा करते हैं। एक बार बाबा मिले लास्ट में, तो बाबा ने कहा कि सेवा तो बहुत करते हो लेकिन ज्ञान योग भी धारण करो, ज्ञान को भी पढ़ाई में रुचि करो। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के जो संस्कार हैं उसको अंदर में धारण करो और उन संस्कारों से अपनी धारणा को मजबूत बनाओ। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम ज्ञान और योग के संस्कार को अपना पक्का संस्कार बनाएंगे, और जैसे हमारी दीदी जी ज्ञान योग में धारणा में बहुत पक्की थी और नंबर वन स्टूडेंट थी, उनकी इस धारणा विशेष को हम अपनी धारणा बनाएं, एक पक्के योगी बनके, चिंतनशील बन करके, योग को योग बल जमा करके, ज्ञानी बन करके, अच्छे सेवाधारी बन करके ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने, अपना जीवन सफल करें। आप सबको यहाँ आने की और ध्यान से सुनने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।